सुबह की हल्की धूप हवेली के आंगन में फैल चुकी थी। रसोई से घी और इलायची की खुशबू पूरे घर में घुल रही थी। डाइनिंग टेबल पर सबने साथ में नाश्ता किया, लेकिन असली हलचल उसके बाद हॉल में शुरू हुई। हॉल आज कुछ ज्यादा ही सजा समरा लग रहा था, जैसे कोई बड़ा मौका आने वाला हो। और था भी, सिर्फ दो दिन बाद विश्वनाथ और अक्षरा की सगाई। सब लोग अपने अपने अंदाज में तैयारियों की बातों में लगे थे। अक्षरा सोफे पर बैठी थी, हाथ में नोटबुक जिसमें वो एक एक चीज लिखती जा रही थी। तभी सुषमा देवी ने कहा, देखो मेहमानों की लिस्ट फाइनल होनी चाहिए आज ही, बाद में कोई छूट गया तो अच्छा नहीं लगेगा। उनकी आवाज में वही पुराना ठहराव और सख्ती थी। रत्ना देवी उनके पास ही बैठी थी। हाँ दीदी, और किचन का पूरा इंतजाम मैं देख लूंगी, बाहर से कुछ मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अदिति सामने खड़ी थी, फोन हाथ में, पूरी तरह एक्टिव मोड में। आप लोग बस टेंशन मत लो, डेकोरेशन से लेकर एंट्री तक सब मैं संभाल लूंगी, ट्रस्ट मी, सगाई यादगार बनेगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अक्षरा थोड़ा दूर बैठी थी, उसके माता पिता उसके पास ही थे। माँ बार बार उसके दुपट्टे को ठीक कर रही थी। देखना, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, हमारी बेटी की सगाई है। अक्षरा बस हल्का सा मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी मुस्कान पूरी नहीं थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो अंदर। उसकी नज़र एक पल के लिए दरवाजे की तरफ गई, फिर उसने खुद को संभाल लिया। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो आत्मविश्वास नहीं था जो होना चाहिए था। उधर विश्वनाथ अभी तक हॉल में नहीं आया था, और शायद कोई खास उसका इंतजार भी नहीं कर रहा था, सब अपनी अपनी प्लानिंग में इतने व्यस्त थे। सुषमा देवी फिर बोली, और हाँ, पंडित जी को टाइम कन्फर्म करवा देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रत्ना देवी ने सिर हिलाया, मैं अभी बात कर लेती हूँ, अदिति ने बीच में ही कहा, और अक्षरा की एंट्री के टाइम पर हल्का सा म्यूजिक रहेगा, बहुत ओवर नहीं, क्लासी रहेगा। हाँ बिल्कुल, सुषमा देवी ने हामी भरी। हॉल में हर तरफ बस तैयारियों की बातें, खुशियों की प्लानिंग और एक आने वाले रिश्ते की गूंज, लेकिन इन सब के बीच कुछ अनकहा भी था, जैसे इस खुशियों की परत के नीचे कोई हल्की सी बेचैनी छुपी हो। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज़ हल्की थी, लेकिन पूरे हॉल में गूंज गई। सबकी बातें एक पल को रुक गईं। रत्ना देवी ने भौहें सिकोड़ कर दरवाजे की तरफ देखा, इतनी सुबह कौन आ गया? फिर उन्होंने नौकर की तरफ इशारा किया, देखो तो कौन है। नौकर तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। हॉल में एक हल्की सी खामोशी फैल गई, सबकी नज़रें अब उसी तरफ थीं। नौकर ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही सामने देखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। पहले हैरानी, फिर आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं, और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। अरे, उसके मुंह से खुद बखुद निकला। हॉल में बैठे सब लोग और भी चौकन्ने हो गए। कौन है? रत्ना देवी ने थोड़ा ऊंची आवाज में पूछा। नौकर ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आवाज में अब उत्साह था। बड़ी ठकुराई, आप? बस इतना सुनना था कि पूरा हॉल जैसे एक झटके में सन हो गया। क्या? सुषमा देवी के हाथ में पकड़ी माला हवा में ही रुक गई। अदिति का फोन धीरे से नीचे हो गया, उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिक गई। अक्षरा का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा, उसने अनजाने में अपने दुपट्टे को और कसकर पकड़ लिया। उसके माता पिता भी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आया। रत्ना देवी धीरे धीरे खड़ी हो गई, चेहरे पर साफ तनाव था। बड़ी ठकुराइन, उन्होंने बहुत धीमे से दोहराया, जैसे इस नाम को सुनकर पुरानी यादें अचानक सामने आ गई हों। हवा का माहौल बदल चुका था, जो हॉल कुछ सेकंड पहले खुशियों से भरा था, अब उसमें एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं, जहां अब भी नौकर साइड में खड़ा था, और उसके सामने कोई खड़ा था जिसका नाम ही इतना काफी था कि पूरे घर की धड़कनें बदल जाएं। अदिति ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन ये तो उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि शायद जो वो सोच रही थी वो सच होने वाला था। अक्षरा के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया, उसने पहली बार महसूस किया कि ये सगाई इतनी आसान नहीं होने वाली। रत्ना देवी एक एक कदम दरवाजे की तरफ बढ़ी, दिल में हजार सवाल लिए। सुषमा देवी भी अब खड़ी हो चुकी थी, चेहरे पर सख्ती लौट आई थी। हॉल में बैठे बाकी लोग बस सांस रोके देख रहे थे, और दरवाजे पर वो परछाई अब धीरे धीरे साफ होने वाली थी। कौन थी वो, क्यों आई थी, और सबसे बड़ा सवाल, इतने दिनों बाद अचानक क्यों? हवा भारी हो चुकी थी और कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी थी। दरवाजे पर खड़ी उस शख्सियत का चेहरा जैसे ही साफ हुआ, सबसे पहले अदिति की नजर उस पर पड़ी, और अगले ही पल उसका चेहरा सख्त पड़ गया। श्यामली, उसकी आवाज में हैरानी कम तन से ज्यादा था। हॉल में हलचल सी मच गई, सबकी नजरें अब उसी तरफ टिक गईं। श्यामली वहीं खड़ी थी, सीधी, बिना झिझक, चेहरे पर अजीब सी शांति, जैसे वो किसी तूफान से गुजर कर आई हो। अदिति आगे बढ़ी, आंखों में पुरानी चुभन साफ झलक रही थी। अब क्या लेने आई हो यहाँ, उसने तीखे स्वर में कहा। वो दिन भूल गई क्या, जब तुम्हें इसी हवेली से बेइज्जत करके निकाला गया था? उसकी बात सुनते ही हॉल का माहौल और भारी हो गया। अक्षरा ने अनजाने में अपनी उंगलियां कस ली, रत्ना देवी की सांस अटक गई, लेकिन श्यामली जैसे इन शब्दों का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने बस एक पल के लिए अदिति की तरफ देखा, फिर नजरें सीधी कर ली। मुझे मिस्टर राठौड़ को बुलाओ, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन इतनी सधी हुई कि हर किसी के कानों तक साफ पहुंची। मुझे सिर्फ उन्हीं से बात करनी है, एकदम साफ, एकदम सीधी। अदिति एक पल को ठिठक गई, उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट तैर गई। मिस्टर राठौर, उसने दोहराया। दिमाग तेजी से चलने लगा, उसे लगा शायद श्यामली आर्यन की बात कर रही है, लेकिन अगले ही पल कुछ क्लिक हुआ, उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं। नहीं, ये शायद पापा के बारे में बोल रही है, उसके मन ने फुसफुसाया। हॉल में खड़े बाकी लोग अब और भी उलझन में थे, ये अचानक क्या हो रहा था। श्यामली वहीं खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब जो होगा वो उसके हिसाब से ही होगा। और अदिति पहली बार थोड़ी असहज दिखी, क्योंकि ये वापसी सिर्फ एक मुलाकात नहीं लग रही थी, ये कुछ और था, कुछ बड़ा।